स्वागत। आज हम अखंड ज्योति पत्रिका से पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करेंगे।
जी।
शीर्षक है समस्त सिद्धियों का आधार तप।
हाँ, बहुत ही गहरा विषय है ये।
तो आज कोशिश रहेगी कि हम उस मूल सिद्धांत को समझें जिसके बिना पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी बड़ी उपलब्धि, खासकर आध्यात्मिक सिद्धि, वो संभव ही नहीं है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव का ये मतलब एक केंद्रीय विचार रहा है। वो अक्सर उदाहरण देते थे जैसे लोहा है या सोना है।
हाँ।
उसे बिना गलाए, बिना तपाए आप उससे कोई कीमती चीज या आभूषण नहीं बना सकते, है ना?
सही बात है।
तो ठीक वैसे ही मनुष्य की जो अंदरूनी क्षमताएं हैं उनको बिना तप की भट्टी में डाले निखारा नहीं जा सकता।
उनका साफ कहना था कि ये विलासिता, ऐशो आराम और आध्यात्मिक तरक्की, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते।
ये एक जरूरी बात है। तो फिर तप का मतलब ठीक ठीक अर्थ क्या समझें? क्योंकि कई लोग तो इसे बस शरीर को दुख देना, कष्ट देना ही मान लेते हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है, पर पूज्य गुरुदेव के अनुसार तप का अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है, व्यापक है।
अच्छा।
ये सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं है बल्कि मुख्य रूप से इंद्रियों पर संयम रखना है, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को नियंत्रण में रखना, सादा जीवन जीना और आत्मानुशासन।
आत्मानुशासन
जी। ये जो बाहरी कर्मकांड हैं, जैसे मान लीजिए केवल माला फेर रहे हैं या कोई पाठ कर रहे हैं, ये तप के मुकाबले गौण हैं, मतलब सेकेंडरी हैं।
अच्छा।
आचार्य जी तो कहते थे कि ये तो बस बाहरी सजावट जैसे हैं, श्रृंगार हैं, असली शक्ति जो है वो तप से ही पैदा होती है। तप क्या है? एक तरह से ऊर्जा बचाने का तरीका है।
ऊर्जा बचाने का, कैसे?
हाँ देखिए, हमारी ऊर्जा इंद्रियों के माध्यम से बाहर बहती रहती है, व्यर्थ होती है। तब उस ऊर्जा को रोककर उसे जमा करके आत्मिक उन्नति में लगाने का विज्ञान है।
ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि कर्मकांड केवल श्रृंगार है, क्योंकि अक्सर तो यही सोचा जाता है कि भाई पूजा पाठ कर लिया, कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया, बस ईश्वर खुश हो जाएंगे।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव इसी धारणा को मतलब बिल्कुल सही नहीं मानते थे। वो कहते थे ये भ्रम है।
भ्रम
जी। वो ईश्वर की कार्य प्रणाली को समझाने के लिए बिजली का बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे।
हाँ बताइए।
जैसे बिजली है, उसके अपने नियम हैं, कायदे कानून हैं। अगर आप नियमों का पालन करेंगे, सही से इस्तेमाल करेंगे तो पंखा चलेगा, रोशनी मिलेगी, लाभ होगा।
ठीक।
पर अगर नियम तोड़े, गलत तार छू लिया तो क्या होगा? करंट लगेगा, सजा मिलेगी, है ना?
हाँ बिल्कुल।
तो ईश्वर भी, वो कहते थे, नियमों से बंधे हैं। वो एक तरह से न्यायाधीश की तरह हैं। उन्हें आप तप और अनुशासन के रास्ते से ही साध सकते हैं, पा सकते हैं, केवल खुशामत करके या कुछ भेंट चढ़ाकर नहीं। सफलता हो या सिद्धियां हो, वो किसी की मेहरबानी से दान में नहीं मिलती। उन्हें तप करके कमाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है।
तो अगर ये बाहरी कर्मकांड काफी नहीं है तो फिर सही रास्ता क्या है? पूज्य गुरुदेव क्या मार्ग बताते हैं?
आचार्य जी इसके लिए दो मुख्य स्तंभ बताते हैं, तप और योग।
तप और योग।
हाँ, और यहाँ योग का मतलब सिर्फ वो आजकल जो प्रचलित है शारीरिक आसन या प्राणायाम वाला योगा, वो नहीं है।
अच्छा, तो फिर?
योग का गहरा अर्थ है परमात्मा से जुड़ना, अपने चिंतन को यानी अपने सोच को और अपने चरित्र को परिष्कृत करना, साफ करना, ऊंचा उठाना।
है, चिंतन और चरित्र को।
जी, और इस योग का एक बहुत ही जरूरी अनिवार्य अंग है ध्यान।
ध्यान, ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है। ध्यान के बारे में पूज्य गुरुदेव क्या खास बताते हैं?
वो ध्यान के दो मुख्य पक्षों पर बहुत जोर देते थे। पहला है एकाग्रता।
एकाग्रता।
हाँ, मतलब हमारा मन जो है वो हजार दिशाओं में भागता रहता है, भटकता रहता है, उसे रोककर एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर टिकाना।
जैसे वो अर्जुन वाला उदाहरण है।
बिल्कुल, जैसे महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, न पेड़, न पत्ते, कुछ नहीं, बस लक्ष्य। तो इसी एकाग्रता के अभ्यास से मानसिक शक्ति, जिसे पूज्य गुरुदेव मना शक्ति कहते थे, वो विकसित होती है।
मना शक्ति।
जी। और फिर आता है दूसरा पहलू, वो है उस एकाग्रता के लिए एक सही लक्ष्य या इष्ट का निर्धारण करना।
लक्ष्य या इष्ट, मतलब
ये कि हमने जो एकाग्रता से मना शक्ति कमाई है उसे लगाना कहाँ है, जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके लिए किसी श्रेष्ठ आदर्श को चिन्हना।
जैसे?
चाहे वो कोई देवता हो या कोई महान विचार हो, कोई महापुरुष हो, उसे अपना इष्ट मानकर उनके गुणों को, उनकी विशेषताओं को अपने जीवन में उतारने की लगातार कोशिश करना।
अच्छा, तो पहले तप से जीवन को अनुशासित करना, फिर ध्यान से मन को एकाग्र करना, और फिर उस एकाग्र मन को एक ऊंचे लक्ष्य पर लगाना।
हाँ,
क्या यही है आध्यात्मिक सफलता और सिद्धियों का पूरा रहस्य?
हाँ, आप कह सकती हैं कि पूज्य गुरुदेव के पूरे शिक्षण का, उनकी पूरी साधना का यही केंद्रीय भाव है। तब से जीवन और इंद्रियां सधती हैं, अनुशासित होती हैं। फिर ध्यान के द्वारा उसी अनुशासित जीवन से जो एकाग्र मनशक्ति मिलती है, जब उसे सही लक्ष्य पर यानी अपने इष्ट पर लगाया जाता है, तभी व्यक्ति अपनी अंदर की शक्तियों को जगा पाता है,
जिन्हें सिद्धियां कहते हैं।
जी, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है, और तभी वो परमात्मा के करीब पहुंच सकता है, उनसे जुड़ सकता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रियायत नहीं, कोई सस्ता सौदा नहीं है। पूज्य गुरुदेव साफ कहते थे कि आशीर्वाद भी उन्हीं को मिलता है, उन्हीं पर बरसता है जो तप की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं।
तो आज की इस बातचीत से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार अगर कोई भी बड़ा लक्ष्य पाना है, खासतौर पर आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो भोग विलास से, आराम तलवी से बचना होगा।
हाँ, उसे त्यागना होगा
और तप यानी कि आत्म अनुशासन को अपनाना ही होगा, और साथ ही ध्यान के जरिए अपने मन को एकाग्र करके एक ऊंचे लक्ष्य पर लगाना भी उतना ही जरूरी है।
निश्चित रूप से, सफलता और आध्यात्मिक उपलब्धियां ये कोई मुफ्त का तोहफा नहीं है, इनकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, और आचार्य जी के शब्दों में कहें तो वो कीमत है तप।
बिल्कुल, तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
जी,
अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी दिनचर्या में तप या एकाग्रता का ऐसा कौन सा एक छोटा सा अभ्यास है जिसे शुरू किया जा सकता है, जिसे धीरे धीरे ही सही अंदरूनी शक्ति का निर्माण शुरू हो सके? इस पर सोचिएगा जरूर। ओम शांति।
ओम शांति।